क्रम में भगवद गीता का दूसरा अध्याय जिसमें भगवान अर्जुन को विभिन्न तर्कों के द्वारा युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आत्मज्ञान के पश्चात भगवान धर्म ज्ञान की व्याख्या अर्जुन को शुरू किए हैं और श्लोक क्रमांक 33 से हम सुन रहे हैं भगवान अर्जुन का जो क्षत्रिय रक्त है उसे उबाल रहे हैं और अर्जुन के क्षत्रिय होने के जो विभिन्न कारण हैं और अर्जुन कैसे उन कारणों को सिद्ध नहीं कर रहे और उसके परिणाम क्या होंगे, ये सब भगवान अर्जुन को एक एक श्लोक में क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करने के क्या क्या दोष हैं वो बता रहे हैं। तो हमने पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कौन सा दोष सुनाया था, क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करने, पांचवा दोष। हम उसकी चर्चा करेंगे फिर से कि कौन कौन से दोष अब तक भगवान सुना चुके हैं अर्जुन को युद्ध नहीं करने के या क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करने के। और आज का जो श्लोक है इसमें भगवान छठा दोष अर्जुन को सुना रहे हैं। अवाच्यवादां शबहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादां शबहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादां शबहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश च बहुन, बहुत सारे योद्धा जो उपस्थित हैं वो हे अर्जुन अवाच्य अप्रिय वचनों से तुम्हें संबोधित करेंगे। वदिष्यन्ति तव अहित, और तुम्हारे अहित या तुम्हारे हितकारी कोई शब्द नहीं कहने वाले, वो तुम्हारे अहित में ही कटु वचन वो तुम्हें कहेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। न केवल तुम्हारी निंदा बल्कि तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा, और न केवल तुम्हारी और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा, अर्जुन तुमसे संबंधित जो कोई है उनकी और उनके सामर्थ्य की भी निंदा। क्या इससे दुखतरम और कोई बात तुम्हारे लिए हो सकती है अर्जुन? इसलिए ततो दुखतरम नुकिम, इससे ज्यादा इससे बड़ा दुख अर्जुन एक क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं है। तो काफी शक्तिशाली ये श्लोक है, भगवान के वचन भी बहुत जोरदार है। तो आज की चर्चा का विषय हमारा पिछले श्लोकों से क्या संबंध, शत्रु अर्जुन को कटु शब्दों से वर्णन करेंगे और हम उसका वर्णन करेंगे। अर्जुन का सबसे बड़ा दुख यहां पर भगवान बता रहे हैं, दुखतरम, सभी दुखों में सबसे बड़ा दुख। और मनुष्य जीवन में वाणी की महिमा क्या है, हमारे वचनों की महिमा क्या है। तो यदि हम देखें पिछला जो श्लोक हमने लिया था तब तक ये पांच दोष, अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा युद्ध नहीं करने से, कीर्ति चली जाएगी, पाप की प्राप्ति होगी, अव्यय अपकीर्ति प्राप्त होगी। और पिछले हफ्ते हमने सुना महारथी केवल सामान्य जन नहीं, महारथी जो वहां पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सभी अर्जुन को, अर्जुन की न केवल निंदा करेंगे बल्कि अर्जुन को डरपोक कहेंगे। तो ये पांच दोष 35वें श्लोक तक, और आज के श्लोक में भगवान दोष नहीं युद्ध करने का बता रहे हैं कि कटु वचन और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा। तो भगवान विशेष रूप से अवाच्य जो स्पीच है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वो लोग किस प्रकार की भाषा, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तुम्हें, तुम्हारी निंदा करने के लिए, या तुम्हें जब वो कहेंगे डरपोक तो केवल वो डरपोक केवल इतना नहीं बोलेंगे, उसका प्रीफिक्स सफिक्स भी होगा बहुत कुछ। तो क्या तुम इतने बड़े दुख को सहन करने के लिए तैयार हो अर्जुन? तो आज का श्लोक इसके विषय में। तो अब शत्रु अर्जुन को कटु शब्दों से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेंगे दुर्योधन को, कि दुर्योधन ने अब तक क्या पांडवों को कोई कटु शब्द कहे थे? ये यहां पर हम इनका उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन ये ऐसे ऐसे उस शत्रु पक्ष में खड़े हुए हैं कि जिन्होंने पहले भी तुम्हें कटु वचन कहे, जैसे कि दुर्योधन, द्यूत क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर महाराज हारते जा रहे थे और अंततः युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को हार गए, तो जब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन के कटु वचन तब शुरू हुए। और दुर्योधन ने सबसे पहले चिल्लाकर उस असत सभा में, उसे असत सभा कहा गया है, उस असत सभा में दुर्योधन ने चिल्लाकर सबसे पहले दासी पुत्र अर्थात विदुर, क्योंकि वहां पर दुर्योधन ये जानता था कि यहां पर कोई अगर विरोध करेगा तो विदुर विरोध करेंगे, न भीष्म, मेरे पिता तो छोड़ दो, वो तो है ही गए गुजरे जो भी, तो न भीष्म न द्रोणाचार्य न कृपाचार्य कोई विरोध नहीं करने वाले, किसी में हिम्मत नहीं, यदि विरोध कोई करेगा तो विदुर। तो इसलिए चिल्लाते हुए सबसे पहले दासी पुत्र विदुर, जाओ तुम और उस द्रौपदी को मेरे सामने प्रस्तुत करो। पहले दुशासन को नहीं कहा था, पहले विदुर। तो विदुर ने, क्योंकि विदुर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, तो उन्हें तो किसी का डर नहीं था, हालांकि वो एक दासी के पुत्र, उस पूरे राज्यसभा में यदि पोजीशन वाइज देखा जाए, पोर्टफोलियो देखा जाए, तो उनका कोई बहुत हाई पोजीशन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो भगवान पर इतने, उनका उनकी शरणागति इतनी थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो इसलिए उन्होंने जो भी खरी खोटी दुर्योधन को सुना दी। महाभारत में इसका वर्णन है। तब फिर दुर्योधन को जब लगा कि मेरा वॉल्यूम इतना नहीं था, वजन इतना नहीं था मेरे बोलने, तो फिर दुशासन, अभी होता ना कोई चिल्ला के पूरी सभा में किसी को बोले करने के लिए और वो मना कर दे, भाड़ में जाओ तो इंसल्ट हो गया ना। अभी सोचा कि अभी किसी रिलायबल आदमी को भेजना चाहिए जो मेरी बात मानेगा, तो कौन है रिलायबल, दुशासन। तो दुशासन को, दुशासन तू जा। तो अब दुशासन, दुशासन के कटु वचन, दुशासन द्रौपदी, द्रौपदी वहां पर जो अपने अंतपुर में थी, तो द्रौपदी को दुशासन कहता है और वो भी तू कह के पुकारता है, बोलता है कि अब तू हार चुकी है, अब तेरा पांडवों से कोई रिश्ता नहीं है, तेरे पति ने तुझे बेच दिया। सोचिए ऐसे कटु वचन मुझे बोलने में भी कैसे तो लग रहा था, ये दुशासन के ऐसे कटु वचन, द्रौपदी जैसी सती को दुशासन इस प्रकार का वचन सुना रहा था। और दुशासन कहता है कि अब द्रौपदी तेरी स्थिति है कि तू हमारे दासियों के साथ रहेगी, ये जो अंतपुर है ये इसके लायक नहीं, अब तो जहां पर दासियां रहती हैं दुर्योधन और मेरी, वहां पर अब तुम्हें रहना होगा। और दुशासन कहता है कि दासियों की तरह झाड़ू लगाना होगा, अभी दासियों के काम करने होंगे। तो ये दुशासन के कटु वचन द्रौपदी को। तो यहां पर महाभारत का ये वर्णन है कि कैसे महाभारत में बताया गया है कि क्षत्रियों, यहां तक कि द्रौपदी एक जो क्षत्राणी थी, इनको जो कटु वचन सुनने पड़े, ये जो वाग्बाण जिसे बोलते हैं, ये जो दूसरे बाण होते हैं उससे भी ज्यादा दुखतरम, इसलिए भगवान ने कहा उससे भी ज्यादा दुखदायी होते हैं वाग्बाण। तो द्रौपदी को दुशासन के मुख से ये सब कुछ सुनना पड़ा और द्रौपदी कुछ बोल ना पाई क्योंकि युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को हार चुके थे। इसके पश्चात कर्ण, कर्ण के कटु वचन। अब देखिए अक्सर लोग कर्ण के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाते हैं कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने दोनों की मिली भगत कर्ण को इस प्रकार से क्यों मारा, क्या वो नाजायज तरीके से, इट वॉज अनजस्ट टू किल कर्ण लाइक दैट, निहत्ता था कर्ण। तो जब कर्ण भी उस समय बड़ी आवाज में भगवान श्री कृष्ण को पूछता है कि आप धर्म की स्थापना करने आते और आप इस अधर्म का आशय लेकर आप अर्जुन को बोल रहे हो मारने के लिए, तब कर्ण के जो कटु वचन कर्ण ने कहे थे द्रौपदी को, जब दुशासन घसीट के बाल पकड़कर घसीट कर द्रौपदी को उस असत सभा में लाता है, तो कर्ण के कटु वचन जो कि बाकियों से सबसे ज्यादा थे, अभी तक दुर्योधन और दुशासन इतने घटियापन पर नहीं उतरे थे जितना कर्ण उतर गया था, तो भगवान ने कर्ण को उस तरीके से इसलिए मारा क्योंकि भगवान ने कर्ण के कटु वचन कर्ण को और अर्जुन को भी याद दिलाए, क्योंकि अर्जुन ने इतना ठंडा पड़ गया था, अर्जुन का खून खौलने लगा जब अर्जुन को याद आई कर्ण ने ऐसे वचन सुनाए थे। तो कर्ण वो जब शुरू करता है बोलना, तब विकर्ण, विकर्ण वो दुर्योधन का एक और भाई, तो विकर्ण उसे सहन नहीं होता, तो विकर्ण वहां पर वो दुर्योधन के विरुद्ध बोलना शुरू करता है। तो कर्ण पहले विकर्ण को चुप करता है, तुम्हारी क्या औकात, तुम क्या बोल रहे हो यहां पर, अरे ये देखो युधिष्ठिर जैसे धर्मराज अपनी पत्नी को हार चुके हैं। और फिर कर्ण कहता है कि ये द्रौपदी इसे कोई स्त्री कह सकता है, 5 पतियों की जो पत्नी है वो क्या वैश्या से कम है, ये क्या वैश्या से कम है, और क्योंकि इसके आचरण एक वैश्या के समान है इसलिए दुशासन इसको निर्वस्त्र करो। ये कर्ण के शब्द थे और जब लोग कहते हैं कि बिचारा कर्ण, ये बिचारा कर्ण है, बिना चारे के जिसको मारना चाहिए वो है ये। लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, भारत देश में पुस्तकें लिखी हैं कि कर्ण कितना बड़ा शूरवीर था, कर्ण का क्या चरित्र था, ये था कर्ण का चरित्र, ऐसे ऐसे शब्द इस कर्ण ने कहे थे। तो भगवान यही ये कटु वचन कर्ण के याद दिला रहे थे। तो अब भगवान अर्जुन को इस समय ये याद दिला रहे हैं कि उस समय अर्जुन तुम्हारी क्या हालत थी मैं जानता हूं, ये कटु वचन सुनने के पश्चात, और फिर तुम तैयार हुए कटु वचन सुनने के लिए, अभी ये जो तुम युद्ध नहीं करने वाले, तो फिर तुम्हें जो ये कटु वचन सुनाएंगे ये सारे कर्ण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, क्या तुमने सीखा नहीं? तो ये भगवान याद दिला रहे थे। और भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंतिम लाइन में, ततो दुख तरम नुकिम। तो यदि हम संस्कृत के इस शब्द को लें तो सर्वप्रथम दुख, फिर दुख तरम, सुपरलेटिव हो गया ना, दुख तरम। तो नीति के अनुसार जब किसी का धन छिन जाता है तो वो दुख में पड़ जाता है, जब कोई शारीरिक पीड़ा में होता है तो उसकी स्थिति दुख से दुखतर। और कहा गया है कि जब कोई कटु वचन कहता है तो कटु वचन जो है वो दुखतरम। अब ये प्रश्न होगा कि शारीरिक पीड़ा और कटु वचन, इसमें कटु वचन शारीरिक पीड़ा से ज्यादा दुखदायी कैसे? कैसे? एक मिनट, हाँ, शारीरिक पीड़ा एक बार जलाती है, बार बार जलाते हैं, मन की पीड़ा। शारीरिक पीड़ा हम भूल जाते हैं, है ना, लेकिन जिसने कटु वचन कहा, 10 साल 20 साल पहले किसी ने कोई कटु वचन हमको कहा है, वो हम कभी भूलते नहीं। और जब भी उस व्यक्ति की याद आती है, व्यक्ति सामने आता है, इसने मुझे वो चपाती देने से मना किया था, है ना, इसने मुझसे कूपन मांगा था, मुझे याद है, अब मुझे भी याद है, देखो मेरी दीक्षा हुई थी 95 में, 1995 में, कितने साल हो गए अभी, 15 साल। तो दीक्षा के दिन, अब उस समय हम इतने नए थे कि कुछ पता भी नहीं था, हमारी दीक्षा ऐसी हुई थी कि जो उस समय दीक्षा के इंचार्ज से, उन्होंने देखा कि एक वो चटाई खाली है, कोई नहीं है बैठने के लिए, बुझा बैठ जाओ, मतलब ठीक है बैठ गए। तो अभी जब नाम मिला, शिक्षा अष्टकम दास, ये क्या है, पहले तो समझ में ही नहीं आया, मालूम ही नहीं था क्या है शिक्षा अष्टकम, क्या होता है। तो फिर उसके उसी दिन सब वो गुरु दक्षिणा वगैरह सब इकट्ठा करते हैं, तो हम गुरु दक्षिणा इकट्ठा कर रहे थे, तो एक बहुत सीनियर डिवोटी, हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने हमसे पूछा, शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोक कौन सा है? अब मुझे तो पता भी नहीं था कि शिक्षाष्टकम क्या है, और उस समय इतना नया था, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं पता मुझे, तो उन्होंने कहा नाम मिला है शिक्षाष्टकम और आता कुछ नहीं। वो बात ऐसी एकदम आर पार, देखो अभी तक मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ड्स भी याद है, वो जगह और टाइम सब कुछ याद है। दुखतरम उसके बाद में क्या है शिक्षाष्टकम जान के रहूंगा मैं। फिर मैंने सेमिनार प्रिपेयर किया आगे चल के वो शिक्षाष्टकम के ऊपर। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके वजह से मैं ये शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखे उसके बारे में बहुत कुछ जान पाया, तो मैं फिर धन्यवाद दे। लेकिन फिर भी लेके वो रहता है मन में चाहे जो भी हो। तो कटु वचन वो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, दुख तरम इसलिए है कि वो जिंदगी भर नहीं अगले जन्म तक भी वो किसी न किसी प्रकार से वो अंदर एक वो कांटा रहता है, चुभता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुख अर्जुन तुम्हारे लिए नहीं। और क्यों? क्योंकि अर्जुन तुम्हारे लिए दुखतरम इसलिए कि अब तक सभी तुम्हारी प्रशंसा करते आए हैं। विशेष रूप से भगवान ने कहा है सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की प्रशंसा करते आए हैं। फॉर अ पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए दुख तरम। तो अब यदि हम अर्जुन के इस सबसे बड़े दुख की चर्चा करें, महाभारत में वर्णन है दुर्योधन ने युद्ध से पहले, क्योंकि दुर्योधन को थोड़ी सी एक ये आशंका हो गई थी कि शायद ये पांडव, ये युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम के बारे में तो कोई डाउट नहीं था कि वो युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन के विषय में दुर्योधन को थोड़ा डाउट था कि क्या पता ये लोग युद्ध न करें, और ये लोग यदि युद्ध नहीं करेंगे तो ये मरेंगे नहीं, इनको मारना है, ये मरेंगे तब जाकर मैं शांति से राज्य कर पाऊंगा। क्योंकि 12 वर्ष दुर्योधन शांति से नहीं सो पाया था, तो इसलिए उसे युद्ध करना था क्योंकि इनको मारना था। तो दुर्योधन को जब ये आशंका हुई कि पता नहीं ये लोग युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, तो दुर्योधन ने शकुनी के पुत्र को भेजा उकसाने के लिए। किनको? पांडवों को उकसाने के लिए शकुनी के पुत्र, शकुनी के पुत्र का नाम था उलूक, एकदम अप्रोप्रिएट नाम, उलूक, ये शकुनी का पुत्र। तो शकुनी के पुत्र को भेजा, तो सर्वप्रथम और पूरा स्क्रिप्ट दुर्योधन का था कि कैसे एक एक की निंदा करनी तुमको जाके, कटु वचन बोलने। तो ये उलूक ये कांपता हुआ डरता हुआ गया, क्योंकि किन किन को कटु वचन बोलने? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कृष्ण, इन सबको। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने शुरू किया और उसने सबसे पहले बोल दिया कि ये मैं केवल एक डिलीवरी बॉय, ये मेरे वचन नहीं है, तो मुझे आप कुछ मत करना। तो भगवान श्री कृष्ण की निंदा, भगवान श्री कृष्ण के मुख पर जैसे भक्त हम भगवान का गुणगान करते हैं, वैसे ये भगवान की निंदा इसने शुरू की। सब कुछ दुर्योधन के वचन थे। वो कहता है उलूक भगवान श्री कृष्ण से कि अरे तुम्हें और कुछ आता है मायावी जादूगर दिखाने के, जो तुम्हारी जादू दिखाते हो उसके अलावा कुछ आता है? भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन बोलता है, वो हस्तिनापुर में जादू दिखा दी क्योंकि तुम हो ही मायावी, मायावी हो तुम, ये सब जादू वादू करना ये सब तुम्हारा ही काम है, तो इसलिए कुछ शस्त्र उठा के ये तुम्हारे जो है ना शागिर्द, इनको बोलो कुछ शस्त्र उठा के दिखाने के लिए, मायावी चीजें नहीं, कुछ असली असल की कुछ चीज बताओ। से भगवान श्री कृष्ण की निंदा शुरू की कि अरे वो बांसुरी छोड़ो, वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कोई वहां पे नाचने नहीं वाला, कोई शस्त्र उठाओ और दिखाओ मर्दानगी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की निंदा उलूक ने की। फिर इसके पश्चात उलूक गया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज के सामने, और युधिष्ठिर महाराज के सामर्थ्य की निंदा की। युधिष्ठिर महाराज को कहता है दुर्योधन के वचन कि तुम बहुत बड़े धर्मराज बने बैठे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी जो भी कूटनीति, देखो दुर्योधन बोल रहा है युधिष्ठिर महाराज को, कूटनीति कर कौन रहा था? दुर्योधन। तो अंदर से तुम्हारी जो कूटनीति है वो सब मैं जानता हूं, और ये जुआ खेलने की तुम्हारी इतनी इच्छा बनी रहती, इतनी इच्छा बनी रहती है जुआ खेलने की, अभी नतीजा देखो। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम यदि ज्येष्ठ हो, राजा बनना चाहते हो, तो थोड़ा क्षत्रिय, क्षत्रिय जो एक वो होता है उसका करेज, वो दिखाओ, और केवल तुम अपने धर्म वर्म की बातें मत किया करो, रणभूमि पर कुछ करके दिखाओ। तो ऐसे युधिष्ठिर की निंदा की, और इसके पश्चात इनके लिए तो स्पेशल स्क्रिप्ट भेजा था भीमसेन के लिए, दुर्योधन ने स्पेशल स्क्रिप्ट भेजा था कि ए भीम, बिना मूछ वाला मर्द, अरे किचन से बाहर आ, केवल खाता रहता है, खाता रहता है। यदि अपने मां का दूध पिया है तो रणभूमि पर आ, नहीं तो मैं समझूंगा मिल्क पाउडर पिया है। वो नहीं था स्क्रिप्ट में। यदि अपने मां का दूध पिया है तो रणभूमि पर आ, और फिर दिखा कि जो तूने खाया, इतनी शक्ति ली है ना, दिखा क्या है तेरे अंदर शक्ति। तो ये भीमसेन के लिए ये दुर्योधन के शब्द, और फिर अर्जुन के सामर्थ्य की निंदा की। अर्जुन के लिए दुर्योधन कहता है कि अर्जुन, तू केवल ये तेरे जो कृष्ण है ना, उसकी आड़ में पीछे से चिल्लाता रहता है, इसलिए डर के मारे कृष्ण को अपना सारथी बनाए। यदि तुम में हिम्मत है तो जो कृष्ण है जानते हो केवल मायावी है, कुछ तो माया दिखा देगा और बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, बचाता रहेगा। तो यदि तुम्हारे अंदर अर्जुन कुछ धनुर्विद्या सीखी है द्रोणाचार्य से, तो कर्ण का सामना करके बता, क्योंकि ये दोनों प्रतिद्वंद्वी थे, अर्जुन और कर्ण, तो कर्ण का सामना करके बता। इस प्रकार से दुर्योधन ने युद्ध से पहले ऐसे ऐसे कटु वचन सुनवाए इन सब को, और इन सब को इसके द्वारा प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। तो देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता सुना रहे हैं प्रेरित करने के लिए, है ना, युद्ध करने के लिए, वैसे ही दुर्योधन ने भी भगवद गीता तो नहीं सुनाई, उसने सारे कटु वचन सुनाए इनको सबको प्रेरित करने के लिए। और क्षत्रियों का उस जमाने में इस प्रकार का स्वभाव हुआ करता था कि क्षत्रिय चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने वचनों में भी कभी वो नीचे नहीं होते थे, अपने वचनों में भी वो इस प्रकार के वाग्बाण छोड़ते थे। जैसे दुशासन, दुशासन के विषय में बताया गया है कि दुशासन इतना जो वो चिल्ला चिल्ला कर द्रौपदी के वस्त्रों का हरण कर रहा था, उस समय भीम उनका खून ऐसा खौल रहा था कि भीम वो बीच में खड़े हो गए। हालांकि युधिष्ठिर महाराज का आदेश था कि कोई यहां पर विरोध नहीं करेगा, लेकिन भीम से सहन नहीं हुआ। जब भीम ने देखा कि दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को खींच रहा है, तो भीम खड़े हो गए, और भीम ने कहा कि दुशासन, ये जो तेरा हाथ है ना, जिस हाथ से तू द्रौपदी के वस्त्रों का हरण कर रहा है, मैं इस हाथों को उखाड़ के फेंकूंगा और तेरी छाती का खून पीऊंगा, ब्लड शेक। देखिए, फेवरेट ड्रिंक था भीम का, ब्लड शेक। तो दुशासन, अब देखिए ये तो भीमसेन इनके शब्द, तो जब दुशासन को मारने की बारी आई तो अर्जुन ने, अर्जुन के सामने दुशासन आया था, अर्जुन ने कहा नहीं 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 वो भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली है तो भीमसेन को बुलाओ। तो भीमसेन जब वो आए तो दुशासन को एक तो पूरा मार मार के उसका भड़ता बना दिया, और उसके बाद जब दुशासन के छाती के ऊपर भीमसेन, और दुशासन को पूछते बता कौन सा हाथ था, कौन सा हाथ था जिस, कौन से हाथ से तूने द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया था बता। और दुशासन देखिए मरते समय नीचे, अब एक पैर उसके कब्र में, अब बस कुछ चंद सांसें बाकी है उसके जीने की, उस समय भी बोलता है ये वाला था। वो देखो एक क्षत्रिय, ये वाला हाथ था। तो भीम ने उसे अपने एक हाथ से पूरा अलग कर दिया, उखाड़ दिया, सच में पूरा ऐसे उसके शरीर से अलग कर दिया वो हाथ। और उसके बाद में भीमसेन इनको दुख हुआ, बहुत जल्दी मर गया, उसको और तड़पा तड़पा के मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि भीमसेन की इतनी शक्ति थी कि एक ही प्रहार से खत्म हो गया उधर, लेकिन खत्म होते होते भी वो बोला ये हाथ है। तो इसमें जो क्षत्रिय हैं उनके गुणों को बताया गया कि क्षत्रिय के गुण क्या हुआ करते थे। तो इसलिए यहां पर सामर्थ्य, किस भगवान ने केवल इतना नहीं कहा कि तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो जब यह कोई सुनता है क्षत्रिय की, मेरी, मेरे सामर्थ्य को चुनौती दी किसी ने, मैं भी दिखाऊंगा, जैसे कि दुशासन मरते समय भी अपने सामर्थ्य को नहीं छोड़ा, यह हाथ बोला। अब श्रील प्रभुपाद, हम समझाएंगे इसके बारे में, श्रील प्रभुपाद ने 1973 में एक प्रवचन इस श्लोक पे दिया, और श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण लिया, अर्जुन की तुलना प्रभुपाद ने एक नर्तकी से की, अर्जुन की तुलना। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण, आज का जो श्लोक है उसके द्वारा अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें याद है तुम एक साल बृहन्नला के रूप में रहे तुम, और बृहन्नला के रूप में तुमने नृत्य सिखाया उत्तरा को। तो भगवान अर्जुन को यह याद दिला रहे हैं कि जो एक नर्तकी होती है जब वो मंच पर आती है नृत्य करने के लिए तो क्या वो ऐसे आएगी। श्रील प्रभुपाद ने यह उदाहरण दिया कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि एक नर्तकी कभी ऐसे मंच पे नहीं आएगी। तो प्रभुपाद ने कैसी कथा से सुनाई कि एक नर्तकी जब उसे पता लगा कि उसके सगे संबंधी बुजुर्ग ऑडियंस में बैठे हुए हैं तो उसने नृत्य के समय घूंघट डाल दिया, तो सारे सगे संबंधी वो कोई उसका गुणगान नहीं करने लगे। प्रभुपाद ने कहा वो सगे संबंधी उसकी निंदा करने लगे, अरे तुम मंच पे आए हो नृत्य करने के लिए तो ये घूंघट डालकर थोड़ी नृत्य होगा। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो एक साल याद दिला रहे हैं कि वो एक साल में तुम नृत्य करते समय तो बिना किसी झिझक के नृत्य कर रहे थे ब्रह्मला के रूप में, और अभी यहां पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे मंच पे तुम खड़े हो क्षत्रिय के रूप में, ये घूंघट क्या डाला हुआ है, किसका घूंघट, कि मैं कैसे मेरे सगे संबंधियों के सामने कैसे युद्ध करूं, कैसे गांडी उठाऊं। तो यह उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने और श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में दिया था अर्जुन को और उकसाने के लिए। तो ये अर्जुन अभी जो हिचकिचा रहे हैं ये इसी के समान, या फिर कोई ऐसे फोटो खिंचाता है, क्या फायदा ऐसे फोटो का, समझ में आएगा कि किसकी फोटो किस समय किस तरीके से ली गई। तो इसलिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बेशरम हो जाओ, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जिस धर्म में स्थित हो, जिस वर्ण में तुम स्थित हो, उस वर्ण के धर्म को पूरा करो, क्षत्रिय के। ये भगवान का कहना था। तो अब हम मनुष्य जीवन में ये जो वाणी है इसकी महिमा क्या है, ये एक बहुत सुंदर श्लोक है नीति से। संसारे कटु वृक्षस्य द्वे फले मधुरोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगतिर सज्जनैर जनै। तो यहां पर तुलना की गई है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो एक कटु वृक्ष के समान है। हालांकि वृक्ष कटु है, लेकिन कहा गया है कि द्वे फले, दो फल इस कटु वृक्ष पर बहुत ही मधुर उगे हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन इस भौतिक संसार में कलयुग में कटु वृक्ष के समान होगा, लेकिन इस कटु वृक्ष के ऊपर दो फल जो कि बहुत अति मधुर उगे हुए हैं, और वो कौन से हैं? सज्जन संगति और मधुर वाणी। कि यदि हमारे जीवन में ये दो चीजें नहीं है कि सज्जनों की संगति और मधुर वाणी, तो ये हमारा वृक्ष केवल कटु वृक्ष रह जाएगा बिना मधुर फल के। तो यदि मधुरता हमारे जीवन में लानी है इस कटुता के साथ साथ, तो वो ये दो चीजें हैं। और रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में जिह्वा, हम एक एक कोट्स ले रहे हैं अभी, जहां पर जिह्वा और वचन हमारी वाणी इसके विषय में बताया गया। तो उपदेशामृत में ये प्रसिद्ध श्लोक, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीम च शिष्यात्। कि वो गुरु बनने लायक है जिसने अपने इन छह वेगों के ऊपर नियंत्रण पा लिया। और हम कहेंगे भाई हम तो कोई गुरु गुरु नहीं है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमार आज्ञा गुरु होइया तारा ही देश, सभी को गुरु बनने के लिए कहा है, अर्थात सभी के लिए ये लागू है। और इसमें जितने भी बाकी वेग बताए गए हैं, जैसे क्रोध वेग, मनस वेग, उदर उपस्त वेग, लेकिन जिह्वा के दो वेग बताए। बहुत ये ध्यान देने लायक बात है कि जिह्वा के दो वेग बताए हैं, एक है वचन और एक है खाते रहना, या तो अंदर या बाहर, ये चलता रहता है, जिह्वा का ये काम है। इसलिए अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारी दो आंखें हैं लेकिन काम एक है उसके देखना, दो कान हैं लेकिन काम एक है सुनना, लेकिन एक जिह्वा है जिसके दो कार्य है, एक तो बड़बड़ करते रहना, फिर खाते रहना, चर्वण, चर्चा और चर्वण, ये दोनों चीजें। तो यहां पर जिह्वा की तुलना हमारे शरीर में, ये हालांकि जिह्वा बहुत एक छोटा सा अंग है, तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा जहाज होता है, ह्यूज शिप, तो जिह्वा की तुलना रडर से की जाती है। वो नीचे जहाज के नीचे, पानी के नीचे होता है वो रडर, और वो रडर डिसाइड करता है कि जहाज राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, वो दिखता भी नहीं। तो उसी प्रकार से ये जिह्वा डिसाइड करती है हमारे अंदर जो है कि हम कहां पर स्थित होंगे। जैसे नीति का श्लोक है, जिह्वाग्रे वसति लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधव, जिह्वाग्रे मरणम प्राप्तम, जिह्वाग्रे मोक्ष लक्षणम। कि हमारे जीव के अग्र भाग पर हमारे मित्र, हमारे शत्रु कितना पैसा हम कमाएंगे वो भी जिह्वा के अग्र भाग पर स्थित है, और हमारा बंधन हमारे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित है और हमारा मोक्ष जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम इस जिह्वा को इसलिए हम वो प्रसादम प्रार्थना में गाते हैं ना, तार मध्य जिह्वार अति लोभमय सुदुर्मति, जिह्वारे लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो इसलिए भगवान जो दुखतरम की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्षत्रियों के अंदर केवल शारीरिक बल नहीं होता है, ये भी बल होता है कि वो वाग बाणों से कैसे दूसरों को दुख दे सकते हैं। एक बहुत ही विशेष श्लोक है नीति से, जिसमें बताया गया है चार चिन्ह स्वर्ग से लौटे जीवों के। स्वर्गच्चतानाम यह भूमि लोके चत्वारि चिन्हानि बसंती देही देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। कि कोई यदि स्वर्ग से लौटा है, कैसे पता लगेगा? ये चार सिम्टम्स है कि वो स्वर्ग से लौटा है। तो ये चार सिम्टम्स अगर किसी के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहला दान प्रसंग, जो कि बहुत दानवीर व्यक्ति होता है तो समझ लेना चाहिए कि ये एक लक्षण है कि ये व्यक्ति पृथ्वी पे अब है तो ऊपर से आया है। जो बहुत होते ना चिंगुट्टो, क्या कौड़ी चुंबक, कंजूस मक्खी चूस जो भी, अगर वो किसी के अंदर उस प्रकार के लक्षण होते हैं तो बिल्कुल भी ये किसके लक्षण है, जैसे बोलते ना अमेरिकन रिटर्न कोई होता है समझ में आ जाता है अमेरिकन रिटर्न है, उसके उसके लैंग्वेज से और हाव भाव चलने से सबसे पता लग जाता है। तो वैसे ये स्वर्ग रिटर्न, स्वर्ग रिटर्न के ये चिन्ह है। सबसे पहला कि दान प्रसंग, कि दानवीर वो व्यक्ति होता है। सुरार्चनम, और सुर का अर्थ है जो देवता है, देवताओं की जो पूजा बहुत करता है तो वो भी स्वर्ग रिटर्न है। ब्राह्मण तर्पणम, जो ब्राह्मणों की पूजा और ब्राह्मणों का ही संग करता है या ब्राह्मणत्व का पालन करता है वो स्वर्ग रिटर्न। और अंतिम चिन्ह है जिसकी वाणी बहुत मधुर है, समझने लेना चाहिए कि ये स्वर्ग रिटर्न, मधुरा च वाणी। तो ये चार चिन्ह हैं स्वर्ग रिटर्न के। अभी आप लोग तैयार हैं? नेक्स्ट चार चिन्ह नर्क से जो लौटा है उसके भी चार चिन्ह है। नरकस्य चिन्हम नरकागतस्य विरोधिता बंधु जलेषु नित्यम सरोगता यह अतीव दोषा दुखतरम क्लेश कटुका च वाणी। समझ गए लास्ट का? तो तब एक एक लेंगे इसमें। कि पहला चिन्ह हेल रिटर्न, नर्क से जो रिटर्न आया है उसका पहला चिन्ह है बंधु विरोधी, झगड़ालू, हर समय वो मतलब उसका गुस्सा, वो बोलते ना नाक के ऊपर नाक के नीचे जहां पर भी, हर समय गुस्सा, हर समय नक चढ़ा जिसको बोलते हैं, और झगड़ा पैदा करने वाला, झगड़ा करने वाला, झगड़े लगाने वाला, सब कुछ, सब अलग अलग कैटेगरीज। तो बंधु विरोधी ये पहला लक्षण। सरोगता, रोग से हर समय पीड़ित, अलग जितने जितने सारे अलग अलग प्रकार के रोग, वो कभी ये कभी कभी आर्थराइटिस, उसके साथ फिर हेपेटाइटिस, जितने भी अलग अलग प्रकार के रोग। तो सरोगता, जो बहुत ज्यादा रोगी रहता है, ये एक लक्षण है। कि इसमें ये बताया गया है दो चीजें, एक तो नरकस्य गत भी, वो जाने भी वाला है। हाँ ये मैं बोलना भूल गया कि वो जो चार चिन्ह है, एक तो जो स्वर्ग रिटर्न है या फिर क्वालिफाइड योग्य है स्वर्ग जाने के लिए, और ये भी जो क्वालिफाइड है नर्क जाने के लिए, और या तो वहां से क्वालिफिकेशन लेके आए, नेक्स्ट अतीव दोष, चोरी करने की प्रवृत्ति। ये चोरी करने की प्रवृत्ति कई बार होता है, कई लोग बहुत, उनके पास जरूरत नहीं होती कुछ चोरी करने की, लेकिन फिर भी इनको कहते हैं पैथोलॉजिकल थीव्स, कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे चोरी, कुछ नहीं मिला तो कोई देख नहीं रहा है तो बस किसी के टेबल से कुछ पेपर वेट उठा के जेब में डाल दिया। मतलब जैसे ही वो अकेले कहीं पे चले गए तो अचानक वो पैथोलॉजिकल थीव्स होते हैं, ये पैथोलॉजिकल लायर्स भी होते हैं, कि बिना कारण कुछ उनको मिलने भी नहीं वाला उसमें, लेकिन फिर भी करेंगे चोरी। तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस डिवोशन फॉर कृष्णा, तो स्पॉन्टेनियस स्टीलिंग प्रोपेंसिटी, ये अतीव दोष है, बहुत अति होते हैं उसके अंदर ये सारे दोष। और फिर अंततः कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी बहुत कटु होती है। जैसे नीति शास्त्र की एक कथा है, एक राजा, राजा का मुख्यमंत्री और राजा का सैनिक शिकार पर निकले और वो खो गए, जंगल में खो गए। तो जंगल में एक साधु महात्मा, बेचारे वो पैदाइशी अंधे थे तो अपनी कुटिया में रहते थे वो, तो अब ये तीनों खो गए, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, संध्या का समय, तो साधु की जो कुटिया, वो साधु की कुटिया से ये लोग गुजरते हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले साधु की कुटिया से गुजरता है और साधु को देखता है, बोलता है, ए अंधे, यहां और किसी को देखा क्या घोड़े पे जाते हुए? नहीं। फिर दूसरा गुजरता है, दूसरा कहता है, ए सूरदास, अंधों को सूरदास भी बोलते, ए सूरदास, किसी को देखा यहां जाते हुए? नहीं। फिर तीसरा, तीसरा जो व्यक्ति गुजरा उसने इनको कहा, विप्रवर, महात्मा जी आपने किसी को देखा? तब इन्होंने कहा, हां, सबसे पहले आपके सैनिक गए, फिर आपके मुख्यमंत्री, और आप राजन अब आए हो, आपका स्वागत है। तो इनको आश्चर्य हुआ कि अचानक ये कैसे पहचान गए, ये तो देख नहीं पाते। उन्होंने कहा, वाणी से, जो पहला गया था वो सैनिक ही हो सकता, वो राजा की वाणी नहीं थी, वो जिसने मुझे अंधा पुकारा था। और दूसरा जा थोड़ा उसका स्टैंडर्ड था, उसने सूरदास बुलाया, लेकिन आपने विप्रवर। तो कटुकाच वाणी, जो जिसकी वाणी बहुत ही कटु होती है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कई बार इस बात को बहुत लोग गुणगान करते हैं कि देखो कितना मुंह फट है ना, मुंह फट, कितना फ्रैंक है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसके दिल में कुछ नहीं रहता है, जो भी मुंह पे बोल देता है नर्क से आया हुआ है। लोग इसका गुणगान करते ना, वो मुंह फट है, दिल में कुछ नहीं रहता, बोल देता है सब मुंह पे। तो शास्त्रों के अनुसार नर्क का चिन्ह है वो, या तो जाने वाला या आए। तो वाणी की तपस्या भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताए हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वानमयम तप उच्यते, वानमयम तप उच्यते। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय में, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल प्लीजिंग बेनिफिशियल एंड नॉन एजिटेटिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। तो यदि हमें वांग तप करना है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश यहां पर क्लियर है, क्या क्या होना चाहिए? उद्विग्न न करने वाली वाणी, नॉन एजिटेटिंग स्पीच, सत्यम प्रियम और हितम, ये चार कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर हमारा जो स्पीच है वो सही शुद्ध होगा। जैसे कि सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर रहे, तो एक बार सोक्रेटिस को के पास एक व्यक्ति आया और उसने किसी और व्यक्ति के बारे में कुछ सुनाने आया था, वो रूमर जिसे कहते हैं ना, अफवाह। सुनाने आया था। तो सोक्रेटिस को एकदम ये सारी जो बातें होती ना, अफवाहें बहुत रुचि लेके लोग बोलते हैं, सुना क्या, सुना क्या, सुना ले, सुना ले, मैं बता दू कितना एकदम रुचि ले लेके, पता उसके साथ क्या हुआ? अरे क्या मालूम ही नहीं, बैठ बैठ। तो ऐसे ये किसी के बारे में बोलने के लिए सोक्रेटिस के पास, तो सोक्रेटिस ने उनका एक था 3 फिल्टर टेस्ट। उन्होंने बोला रुको रुको, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये सत्य बात है क्या जो तुम बताने वाला, इज इट ट्रूथफुल 100%? मुझे आई डोंट नो, ओके फॉरगेट इट। सेकेंड फिल्टर टेस्ट, इज इट गुड और बैड, जो भी तुम बताने वाले हो इज इट गुड न्यूज और बैड न्यूज? बोले इट इज बैड न्यूज। थर्ड फिल्टर टेस्ट, इट इज इट बेनिफिशियल? कहा नहीं, देन व्हाई आर यू स्पीकिंग, इट इज नॉट ट्रूथफुल, इट इज नॉट गुड एंड इट इज नॉट बेनिफिशियल ऑल्सो, देन शट अप। तो यही चीज जो सोक्रेटिस ने कहा, ना तो वो सत्य है, ना वो प्रिय है, ना वो हित करने वाला है किसी का। सो बेटर बी साइलेंट। जैसे एक व्यक्ति अपने शिष्य के साथ प्रभुपाद से मिलने आए, उनके शिष्य ने इंट्रोड्यूस किया कि हमारे गुरुजी वो बोलते नहीं। प्रभुपाद ने कहा हाँ बहुत अच्छा, मैं बोलूंगा वो सुनेंगे, हमारा काम खाली बोलना ही है। फिर प्रभुपाद ने बोला कि हाँ बहुत से ऐसे जो भारत में मायावादी हैं वो चुप रहे तो अच्छा है, क्योंकि न तो वो परम सत्य सुना रहे हैं, न वो सही बात सुना रहे हैं, न किसी के हित के लिए सुना रहे। इसलिए भगवान ने ये जो कहा ये बहुत ही सही है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, एक तो बिना उद्विग्न किए उस प्रकार की वाणी होनी चाहिए, और ये नहीं तो फिर क्या है कि हम वो जो चापलूसी की बातें होती हैं, नहीं सत्य होनी चाहिए। कई बार लोग झूठ बोलते हैं वो बिना उद्विग्न किए, वो बहुत प्रिय भी होती है, लेकिन देखिए भगवान ने ये ऐसा 4 फिल्टर टेस्ट रखा है कि वो सत्य परम सत्य से संबंधित वो प्रिय भी होनी चाहिए, वो हितकारी भी होनी चाहिए, और उस अगले व्यक्ति को उद्विग्न न करे। क्योंकि कलयुग में ये बहुत जरूरी है, कलयुग कलह प्रधान युग है, और कलह श्रीमद् भागवत के अनुसार कलह प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया है कि यदि किसी जंगल में अग्नि लगी है, तो यदि एक पेड़ में अग्नि लगी है तो वो पूरे जंगल को वो अग्नि कब कब जलाती है? जब हवा चलना शुरू करती है ना, जब हवा चलती है तो वो एक पेड़ से अग्नि, हवा उस अग्नि को दूसरे पेड़ में ले जाती है। उसी प्रकार से जब दो व्यक्तियों में इस कलयुग में कलह होता है तो वो दो व्यक्ति से कलह तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, पांचवें व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है? कटु वचन से। जैसे एक बार एक छोटे से बालक ने अपने पिता से पूछा, वो पढ़ रहा था, पूछा कि ये वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होता है, हाउ डज वर्ल्ड वॉर बिगिन? तो उसके पिताजी उसको आंसर देने लगे, सी व्हेन द इकोनॉमिक कोलैप्सेस एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और ये सब। तो वो किचन में उनकी माँ कुकिंग कर रही थी, बोली कि ये इसको समझ में आएगा, ये सब इतना सब अच्छा है इसको समझ में आएगा? अरे इसके अनुसार बताओ। तो जो पिता है वो अपनी पत्नी को बोलने लगे, तुम्हारा काम किचन में कुकिंग करना है, तुम किचन में कुकिंग करो। अरे तो कुकिंग करना ही खाली मेरा काम है क्या? ये बच्चे को सही परवरिश देना ये भी मेरा काम है। अरे मैंने कहा तुम किचन में जाके कुकिंग करो। तो बच्चा बोलता है मेरे को समझ गया वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होता है। हमारे हमारे ट्रेनिंग में एक थे, वो यहां के थे, साउथ इंडिया के थे, तो हिंदी इतनी उनकी ठीक नहीं थी। उनका नाम था स्वामीनाथन, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं। तो एक हमारे जो डिपार्टमेंट में एक चपरासी आया करता था, दौलत राम, नाम भी देखो दौलत राम। तो उसने इनसे कहा, ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मिस्टर स्वामीनाथन, तो इनसे कहा कि अब छुट्टी चाहिए एक हफ्ते की। एक हफ्ते? तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया हफ्ता क्या होता, उनको लगा महीना, बोला एक हफ्ता, हफ्ता वीक वीक। अच्छा तो क्यों चाहिए? साहब आप क्या समझोगे, दो बच्चों का बाप हूं मैं, क्या समझोगे आप दो बच्चों का बाप? तो ये भी सोचा कि ये मेरे को चैलेंज दे रहा है, वो भी हिंदी में बोले, तुम भी क्या बोलते मेरे को, मैं दो बाप का बच्चा है। तो बोला सर नहीं चाहिए छुट्टी है, सच में तुम भी क्या, मैं दो बाप का बच्चा है। वही हमारे ट्रेनिंग में एक और था हरजिंदर सिंह करके, हरजिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह को ये हमारे मिस्टर सेलियन थे, ये भी तमिल तमिलनाडु के थे, मिस्टर सेलियन हरजिंदर सिंह को पूछते तमिल तेरेमा, मतलब तमिल जानते हो क्या, तमिल तेरेमा, वो मतलब तमिल में पूछे, तो ये इनको गुस्सा आ गया, ये हमारे हरजिंदर सिंह उनको चिल्ला के बोले, ओए खोते तमिल मेरी मां तो हिंदी तेरा बाप। तो कई बार भाषा नहीं आने से भी समझ में नहीं आता है कि वो कटु वाणी बोल रहा है कि मधुर वाणी बोल रहा है। तो खैर भगवान इस 17वें अध्याय में बता रहे हैं कि वही भगवान जो अब आज के श्लोक में अर्जुन को कहे कि तुम्हारी निंदा करेंगे, न केवल तुम्हारी निंदा करेंगे अर्जुन, दुखतरम इसलिए कहा कि तुमसे संबंधित तुम्हारे भाई और मेरी भी निंदा करेंगे, क्योंकि तुम मेरे रथ पर हो, मैं तुम्हारा सारथी हूं, तो मेरी भी निंदा करेंगे। तो क्या इनडायरेक्टली भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे सामर्थ्य और तुम्हारे सामर्थ्य से संबंधित जो कोई है उन सब की निंदा ये करने वाले हैं, तो इससे बड़ा दुख अर्जुन तुम्हारे लिए और कोई नहीं। तो अब 6 दोष सुनाने के पश्चात अब भगवान अगले श्लोक में एक थोड़ा प्रलोभन अर्जुन के सामने रख रहे हैं कि क्षत्रिय यदि मर भी जाए रणभूमि पर तो भी उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, यदि वो मर भी जाए, कुछ भी ना करे, मर भी जाए तो भी स्वर्ग की प्राप्ति उसे होती। तो वो प्रलोभन से अब भगवान अगला श्लोक प्रारंभ करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की